بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. كتاب اللباس کا یہ دوسرا باب ہے، اور اس میں حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کرتا پہننا پسندیدہ ہے اور مستحب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بالعموم حجاز میں جو لباس استعمال کیا جاتا تھا وہ دو چادروں پر مشتمل ہوتا تھا، جیسے حاجی اور عمرہ کرنے والے احرام میں دو چادریں پہنتے ہیں. تو بالعموم لوگ دو چادروں والا لباس پہنتے تھے، نیچے لونگی اور اوپر چادر، اور احرام میں ان دونوں کپڑوں کا سفید ہونا مستحب ہے، اور عام حالات میں بھی سفید رنگ کے کپڑے پہننا زیادہ پسندیدہ ہے، مگر ہر شخص اس کو جیسا لباس مہیا ہو جاتا تھا ویسا پہن لیتا تھا. جہاں تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تعلق تھا، تو فتوحات کے دور سے پہلے غربت بہت زیادہ تھی، تو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تک نوبت آتی تھی کہ بعض حضرات صرف لونگی پر اکتفا کرتے تھے، تو ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ستر کو ڈھانپ سکے ایسی چادر ان کو مہیا ہو جاتی تھی، اسے پہن لیتے تھے، اس سے ستر ڈھک جاتا تھا اور بس وہی ان کا لباس ہوتا تھا. یہی صرف لنگی پہن کر مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزمرہ کے کام بھی بس اسی ایک لنگی میں ہوتے تھے. بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ ہوتے تھے کہ جن کے پاس کپڑا ایک ہی ہوتا تھا مگر وہ لمبی بڑی چادر، تو اسے بہت اچھی طرح سے لپیٹ لیتے تھے، جیسے کشمیری شالیں آتی ہیں بہت لمبی چوڑی، تو کندھوں کے اوپر سے یوں اس طرح لپیٹ لیتے تھے کہ کندھوں سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک سب کچھ چھپ جاتا تھا، تو پھر ستر چھپ گیا. کچھ حضرات وہ ہوتے تھے کہ جنہیں ایسی چادر ملتی تھی کہ اس کے ذریعے کندھوں سے لے کر گھٹنوں سے نیچے تک کے حصے کو ڈھانپ سکتے تھے، مگر وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی تھی کہ اس طرح پوری لپیٹ سکیں، تو اس زمانے کے انداز سے بدن پر لپیٹ کر یہاں گردن میں گرہ لگاتے تھے، نوٹ لگاتے تھے، گانٹھ لگا لیتے تھے. اور کچھ حضرات وہ تھے کہ جنہیں دو چادریں میسر آ جاتی تھی، مگر وہ دو چادریں ایسی ہوتی تھی کہ کوئی سوٹ ووٹ نہیں بنتا تھا، نیچے کی چادر الگ قسم کی، اوپر کی چادر الگ قسم کی، اور خال خال کبھی کبھی کسی کو ایسی چادریں مہیا ہو جاتی تھی دو، جس کو سوٹ کہا جا سکے کہ نیچے کی چادر اوپر جیسی، اوپر کی چادر بھی نیچے جیسی. फिर जब मुसलमानों को फतुहात नसीब हुई तो उसके बाद जो है वो हालात में तगय्युर हुआ, मगर फतुहात से पहले की ये सूरत हाल थी। अब इससे ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि सफेद रंग के अफजल होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन ने सियाह रंग के कपड़े क्यों पहने, सुर्ख रंग के कपड़े क्यों पहने, मुनक्कश और नक्शो निगार वाली चादरें क्यों पहनी? इसलिए कि तंगी इतनी थी कि जो चीज मिल जाती थी उसे पहन लेती थी। तो इस हदीस में हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि कपड़ों में सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को कमीज था। अब हमारे उर्फ में कमीज जो है वो शर्ट को कहते हैं, ऊपर का जो लिबास है उसे कुर्ता कहते हैं, जो लंबा होता है कुर्ता कहते हैं, कफनी कहते हैं, जुब्बा कहते हैं, और जब कमीज बोला जाता है कि उसने कमीज पहनी है तो हमारे उर्दू जुबान में कमीज से मुराद शर्ट होता है, ये अंग्रेजी टाइप का शर्ट जो कमर तक होता है। मगर अरबी में जब अल कमीज का लफ्ज बोला जाए तो इसका मतलब यह होता है कि चादर के मुकाबले में सिली हुई चीज जो भी ऊपर के बदन में पहनी जाए। तो अब माना यह होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के जमाने में जो लिबास पहना जाता था आम तौर पर बिल उमूम वो नीचे लूंगी ऊपर चादर, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को ये सीधी सादी जो चादरें होती थी यानी बगैर सिली हुई उसके मुकाबले में सिला हुआ कपड़ा पहनना ज्यादा पसंद था। अब इसका अगर ठेठ तर्जमा कोई करे और कमीज का तर्जमा शर्ट से कर दे और कोई ये समझे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ये कमीज पहनते थे जो हमारे यहां बाजार में है, तो ये माना गलत होगा। कमीज का माना यह कि बदन पर वो कपड़ा पहनना, बदन के ऊपर के हिस्से का वो कपड़ा जो सिला हुआ हो, और सिला हुआ भी इस तरह हो कि उसकी दो आस्तीनें हो और उसका गिरेबान हो जिसमें से कपड़े को सर के जरिए गर्दन तक पहुंचाया जाए, इसको कमीज कहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। अब दूसरी रिवायत से हमें मालूम करना पड़ेगा कि ये जो सिला हुआ कपड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पहनते थे वो कैसा था। तो दूसरी रिवायत से ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जो कमीज पहनते थे, जो कमीज आपने पहना है, चादरें भी पहनी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मगर जो कमीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहना है तो उसका गिरेबान होता था। अब गिरेबान जो है वो यहां बीच में भी हो सकता है, गिरेबान साइड पर भी हो सकता है, गिरेबान पीछे भी हो सकता है, वो जैसा भी उर्व हो। उसकी कोई तायिन रिवायत में मिलती नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का गिरेबान कहां था। और दूसरी बात यह मालूम होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने जो कमीज पहना था वो कॉटन का था, ऊन का नहीं था, वूल का नहीं था, कॉटन का था। और वजह उसकी यह है कि गर्म मुल्कों में जब ऊन के और वूल के कपड़े पहने जाए तो बदन में पसीना होता है और वो आरामदेह भी नहीं होता, और कॉटन का कपड़ा गर्म मुल्कों में आरामदेह होता है, तो कॉटन का था। तीसरी बात हमें रिवायत से मालूम होती है, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि वो बहुत लंबा नहीं था और बहुत लंबी आस्तीनों वाला नहीं था, बहुत लंबी आस्तीनों वाला नहीं था और बहुत लंबा नहीं था। अब इतना सुनकर के जहन में ही आता है कि बहुत लंबी आस्तीनों वाला नहीं था, इसका मतलब यह है कि ये कोहनियों तक होगा या कोहनियों और पहुंचों के बीच तक होगा, इसलिए कि अगर ये मेरी जो आस्तीन है ये पहुंचो तक की, तो इससे ये मालूम होता है कि ये लंबी है, इसको नॉर्मल यही होती है, तो बहुत ज्यादा लंबी आस्तीनों वाला नहीं था। इसका मतलब है कि पहुंचो से नीचे होगा और बहुत ज्यादा लंबा नहीं था, तो इसका मतलब ये है कि ये टखनों तक नहीं था या निस्फे साग तक नहीं था, घुटनों तक नहीं था, कमर से जरा ऊपर होगा। मगर दूसरी रिवायतों को जब हम देखते हैं तो उसमें उसकी तायीन है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जो कमीज पहना था तो उसकी आस्तीनें ये पहुंचों तक थी। तो रिवायत में यह है कि बहुत ज्यादा लंबी आस्तीनों वाला नहीं था, एक रिवायत में, और दूसरी रिवायत में यह है कि पहुंचों तक आस्तीनें थी। तो पता यह चला कि इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा जब यह फरमा रहे हैं कि बहुत ज्यादा लंबी आस्तीनों वाला नहीं था, इससे वो ये कहना चाहते हैं कि इतनी लंबी आस्तीनें नहीं थी कि देख करके ऐसा लगे कि ये कुछ ज्यादा ही लंबी है। जैसे उस जमाने में ये रिवाज था कि जरा तकब्बुर में और बढ़ाई में अपने कपड़े जो है जरा यूं लंबे रखते थे, आस्तीनें यहां तक लंबी होती थी। तो जैसे यहां पर ये बताना चाहते हैं कि नॉर्मल आस्तीन से ज्यादा लंबा नहीं था, तो कुर्ते की लंबाई के बारे में भी यही कहना चाहते हैं कि कुर्ते की जो नॉर्मल लंबाई होती थी उससे बहुत ज्यादा लंबा नहीं था। इसका मतलब यह नहीं है कि वो कमर तक था या कमर से कुछ ऊपर था। चूंकि दूसरी रिवायत में यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्ता पहना था वो टखनों से ऊपर नहीं जाता था, तो उस जमाने में तकब्बुर की वजह से लोग वो टखनों से ऊपर तक जुब्बा पहनते थे, कुर्ता पहनते थे। तो कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता लंबा नहीं था, लंबाई वाला कुर्ता नहीं था, इसका मतलब ये टखनों से ऊपर नहीं जाता था। और अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता जो है वो निस्फे साग तक होता था। तो इस हदीस के अंदर जो है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ों में सबसे ज्यादा महबूब कपड़ा कमीज था, तो इसका आप सारी रिवायतों को सामने रख करके जो नक्शा हमारे सामने आया वो ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ों में सबसे ज्यादा पसंदीदा कुर्ता था, और कुर्ता भी वो जिसका गिरेबान था, कुर्ता भी वो जो कॉटन का था, कुर्ता भी वो जिसकी आस्तीनें पहुंचों तक थी, और कुर्ता भी वो कि जिसकी लंबाई निस्फे साक तक थी। एक बात जो मैं बार बार अर्ज करता हूं वो फिर दोहरा दूं कि आपने देख लिया कि सिर्फ एक हदीस को लेकर अगर कोई किसी बात को समझने की कोशिश करेगा तो धोखा खा जाएगा। अब सवाल यहां पर यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा महबूब कुर्ता क्यों था। जैसे मैंने अर्ज किया कि सतर को छुपाने का एक तरीका तो लूंगी, दूसरा तरीका सतर को छुपाने का लंबी चादर, तीसरा तरीका लूंगी और लंबी चादर के दरमियान, और चौथा तरीका यह है कि लूंगी और उसके ऊपर चादर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्ता सबसे ज्यादा पसंदीदा क्यों था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादरें भी ओढ़ी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लूंगी भी पहनी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ता भी पहना है, तो सबसे ज्यादा कुर्ता क्यों पसंद था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो हजरत मुहद्दिसीन ने उसकी मुख्तलिफ वजूहात बयान की हैं। एक वजह तो यह बयान की है कि लूंगी या चादर इतना सतर को छुपाने वाला नहीं होता जितना के कुर्ता। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो लुंगियां पहनी जाती थी वो सिली हुई नहीं होती थी, तो जाहिर है कि जरा कुछ गफलत होगी तो वो सतर खुल जाएगा। इसी तरह चादर है, यूं ओढ़ी हुई है अच्छी तरह, जरा गफलत हो जाएगी तो सतर खुल सकता है। और कमीज जो है वो चूंकि सिला हुआ होता है यहां से नीचे तक, तो उसमें सतर के खुल जाने के इम्कानात कम थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमीज को ज्यादा इसलिए पसंद फरमाते थे कि वो सतर को छुपाने वाला ज्यादा था, एक बात ये। नंबर दो, पहनने के एतबार से भी कमीज में बोझ कम होता है, इसलिए कि आपने एक मरतबा पहन लिया फिर फिक्र नहीं रखने की, और लूंगी और चादर में हर वक्त जहन पर बोझ रहता है, चादर खिसक जाती है फिर उसे पहनो, और कमीज को पहन लेने के बाद आदमी फारिग हो जाता है। तीसरी वजह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के मेयार के एतबार से चादर जो है वो महंगी चीज थी और कमीज जो है वो सस्ता होता था। वो चादरों का रिवाज था, मार्केट में चादर किस्म किस्म की चादरें आती थी और लोग खरीदते थे। जैसे आजकल भी जिन लोगों को शाल का शौक होता है तो लाखों की मिलती है चादरें और शालें, तो उस दौर में चादरें जो है वो गनी और मालदार और शौक रखने वाले लोग पहनते थे और वो जरा महंगी होती थी, और कमीज जो है वो सस्ते में निमट जाता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की तरफ इतनी रगबत नहीं थी, इस वजह से पसंद था। एक और वजह यह है कि उस जमाने के लिहाज से चादर पहनने वाले में उजब और किबर के आ जाने का अंदेशा था कि मैं बहुत अच्छा लगता हूं, ये चादर बहुत अच्छी है, और कमीज उस जमाने में सिंपल समझा जाता था। जैसे हमारे जमाने में ये कुर्ता है, जुब्बा है, शर्ट है, जैकेट है, ऐसी चीजें पहनकर कोई निकलता है तो उजब के आने का अंदेशा है, और कुछ न पहने और चादर पहनकर निकल पड़े तो उजब का कोई अंदेशा नहीं है, तो उसके बरक्स था उस जमाने में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उजब से पाक थे मगर एहतियात बहुत ज्यादा था, और उम्मत की तालीम के लिए भी। और हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने यह भी फरमाया है कि भाई एक वजह यह भी तो है कि एक शख्स लुंगी पहनकर निकल आवे, एक शख्स सिर्फ चादर पहनकर निकल आवे, और उसके मुकाबले में अगर एक शख्स कमीज पहनता है यानी ये कुर्ता पहनता है तो वो जरा लगता भी अच्छा है, तो जीनत के एतबार से भी ये ज्यादा अफजल था। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पसंद फरमाते थे। अब हम सभी कमीज पहनते हैं, कोई पाकिस्तानी शलवार कमीज में से कमीज पहनता है, या कोई ये सऊदी अरब वाला जुब्बा पहनता है, कोई हमारा हिंदो पाक वाला कुर्ता पहनता है, कोई कफनी पहनता है, ये सब कमीज में आ गया। तो अगर हम ये नियत कर लिया करें कि हम ये कमीज इसलिए पहन रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमीज बहुत ज्यादा पसंद था, तो रोजाना हमें अजर सवाब मिलेगा। तो इसलिए कमीज पहनने की कोशिश भी करनी चाहिए, कुर्ता है, जुब्बा है और कफनी है, और उसमें नियत भी ये करनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज पसंद थी इसलिए हम भी पहन रहे हैं, तो इस पर इंशाल्लाह अजरो सवाब भी मिलेगा। एक यहां पर इश्काल है, और वो इश्काल ये है कि एक दूसरी हदीस में ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में कपड़ों में से सबसे पसंदीदा कपड़ा हबरह चादर थी। तो मुख्तलिफ किस्म की चादरें मिलती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, तो उनमें से एक चादर जो है उसका नाम है हिबारा। तो यहां यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ों में सबसे ज्यादा पसंदीदा कमीज था, और वहां यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ों में से सबसे ज्यादा पसंदीदा हिबारा चादर थी। तो उसका जवाब यह दिया है मुहद्दिसीन ने कि सिले हुए कपड़ों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा पसंदीदा कुर्ता था, जुब्बा था, इसलिए कि वो उस जमाने में चौगा भी मिलता था, जैसे हमारे यहां सऊदी अरब का वो मिशला पहनते हैं, अइमतुल हरम पहनते हैं जुमा में या ईद में इमाम साहिब पहनते हैं, तो उस जमाने में भी ऐसे चौगे भी होते थे, जुब्बे, उनको असल जुब्बा कहा जाता था, जुब्बे, चौगे, मिशला, तो ये मिसले जुब्बे चौगे उस जमाने में भी थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहनना भी साबित है, इसलिए कि कपड़े इतने कम थे। जैसे कि बुखारी शरीफ की रिवायत है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में किसी ने कपड़े पेश किए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन चादरों को पहन करके बाहर आ गए, बहुत उम्दा बहुत खूबसूरत कपड़े थे। तो एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बहुत पसंद है ये कपड़े, आप मुझे दे दीजिए। तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन बैठे हुए थे मजलिस में, आप खामोश रहे मजलिस के दौरान, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए और अंदर तशरीफ ले जाने के बाद कपड़ों को उतारकर बाहर भेज दिया और उन सहाबी की खिदमत में हदीयतन पेश कर दिया, हदीयतन दे दिए दिए वो कपड़े उन सहाबी को। तो दूसरे सहाबी किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने मलामत की। तो रिवायत से ये पता चलता है कि सहाबा ने मलामत ये की कि तुम्हें पता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कपड़ों के मोहताज थे और इन कपड़ों के मोहताज होने के बावजूद तुमने मांगे, जबकि तुम्हें यह पता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई उजर पेश नहीं करेंगे और तुम्हें दे देंगे। तो मोहताज का मतलब है कि कपड़े थे नहीं, किसी ने कपड़े हदीये में दिए तो पहनकर बाहर तशरीफ लाए और उन्होंने मांगे तो वो कपड़े वापस दे दिए, हदीये में दे दिए, हदीये में दे दिए। तो वो सहाबी रजी अल्लाह अन्हु अर्ज करने लगे कि असल में बात यह है कि मैं भी जानता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहताज थे, मगर आज अचानक मेरे दिल में यह ख्याल आया कि मेरा जब इंतकाल हो तो मैं जिन कपड़ों में कफनाया जाऊं वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक से लगे हुए हों। ये अचानक ख्याल आया और फिर ख्याल ये आया कि भाई मौत हयात का तो कोई भरोसा नहीं है, तो मुझे पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहताज थे इन कपड़ों के, मगर मेरी मौत का तो कोई पता नहीं कि कब मौत हो जावे, इस वजह से मैं मजबूर होकर के बस जो कुछ करना था मैंने कर लिया। और फिर उन्होंने उन कपड़ों को महफूज रखा और जब उनका इंतकाल हुआ तो उस वक्त वही कपड़ा उनका कफन हुआ। तो अर्ज करने का मंशा यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौगे भी पहने हैं, जुब्बे भी पहने हैं, तो सिले हुए कपड़ों में सबसे ज्यादा पसंदीदा कमीज और वो चादरों में सबसे ज्यादा पसंदीदा वो चादर थी जिसको शिबरह कहा जाता था। बाबुन सीफतु तूलिल कमीसे वल कुम्मे वल इजारे व तरफिल इमामते व तहरीम इस्बाल शैइन मिन ज़ालिक अला सबीलिल खुयलाए व कराहतिही मिन गैरि खुयलाए। अन अस्मा बिन्त यज़ीद अल अंसारीयति रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत काना कुम्मु कमीसे रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलर रुज़्ग़ رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن। امام بخاری امام نووی رحمه الله تعالی ایک اور باب شروع کر رہے ہیں اور اس میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کرتا جو ہے کرتا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنتے تھے تو اس کی آستین کہاں تک ہوتی تھی اور آستین کا کہاں تک ہونا مستحب ہے پسندیدہ ہے। एक और चीज ये भी बयान करना चाहते हैं कि कुर्ता कितना लंबा होना चाहिए, लुंगी कितनी लंबी होनी चाहिए और इमामे का जो शमला है वो कितना लंबा होना चाहिए और टखनों से ऊपर तक अगर लंबी हो जाए ये सारी चीजें तो ये नाजायज है। किस सूरत में नाजायज है, किस सूरत में मकरूह है, किस सूरत में जायज है, इन सारी चीजों को बयान किया जाएगा। आज जो है सिर्फ आस्तीन के बारे में ये हजरत अस्मा बिनत यजीद अल अंसारिया रजी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस है, उसे सुन लीजिए कि अस्मा बिनत यजीद अल अंसारिया रजी अल्लाह अन्हा قالت كان قم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرزغ رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن। हजरत अस्मा बिनत यजीद अल अंसारिया रजी अल्लाह अन्हा से मरवी है, वो फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते की आस्तीन पहुंचे तक थी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की ये कुर्ते की जो आस्तीन है वो पहुंचे तक थी। तो पहुंचे तक अगर कुर्ते की आस्तीन है तो ये सुन्नत है, अब देखो ये जो हमारी आस्तीन है कुर्ते की, वो यहां तक भी हो सकती है, 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 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर हम थोड़ा दर्जी को ये कहें कि भाई यहां तक, ये जोड़ तक। तो हमें रोजाना पूरे साल के 360 दिन के लिए 12-12, 14-14, 16-16 घंटों तक एक सुन्नत पर अमल करने का अजर सवाब मिल जाएगा। तो इस किस्म का सवाब जो है हम मुफ्त में खो रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कुर्ता था उसकी आस्तीन जो है वो पहुंचों तक थी। अब दूसरी रिवायत में यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्ता पहना था उसकी आस्तीनें उंगलियों तक थी। तो दो रिवायतें हैं हमारे पास, एक तो यह कि पहुंचों तक और दूसरी रही है कि उंगलियों तक। तो इन दोनों रिवायतों में तत्बीक इस तरह की है हजरत मुहद्दिसीन ने कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमीज पहनते थे, कमीज, तो कमीज की आस्तीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचों तक रखते थे। और कमीज के अलावा कोई और चीज होती थी, जैसे हमारे जमाने में कि हम कमीज पहनते हैं और कमीज के ऊपर स्वेटर पहनते हैं, कमीज के ऊपर शेरवानी पहनी जाती है, कमीज के ऊपर कोट पहना जाता है, जैकेट पहना जाता है। तो कमीज के लिए मुस्तहब यह है कि ये पहुंचों से ऊपर न जाए, पहुंचों से अगर ऊपर जाएगा तो सुन्नियत के खिलाफ हो जाएगा। और उसके अलावा बाकी उसके ऊपर जो भी लिबास पहना जाएगा, कमीज के ऊपर, कुर्ते के ऊपर, तो उसके लिए सुन्नत यह है कि वो उंगलियों से आगे न जाए। तो कुर्ते के लिए सुन्नत यह है कि पहुंचों तक रहे और उसके ऊपर जो कपड़ा पहना जाए वो उंगलियों तक रहे। तो दोनों हदीसों में तत्बीक हो गई। हजरत मुहद्दिसीन ने एक दूसरी तत्बीक यह बयान की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉटन का कमीज पहनते थे और कॉटन में जो है वो सिलवटें आ जाती है, क्रीस आ जाती है। तो बिल्कुल शुरू में जब पहनते थे तो उंगलियों तक होता था और फिर जब दिन गुजरता था, डेढ़ दिन दो दिन जब गुजर जाते थे तो सिलवटें पड़ पड़ के वो आस्तीन जो है वो यहां तक आ जाती थी। और तीसरी तौजीह ये की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में कम से कम दो कमीजें तो पहनी होंगी, जैसे एक रिवायत से पता चलता है। तो एक कमीज जो है, एक कुर्ता यहां तक था पहुंचों तक और एक कुर्ते की आस्तीन उंगलियों तक थी। और दो किस्म की आस्तीनें बनवाकर और पहनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को यह बतलाया कि पहुंचों तक आस्तीन रखना सुन्नत और मुस्तहब है और उससे आगे अगर कोई लंबी आस्तीन रखना चाहता है तो उंगलियों तक जायज है। तो एक कुर्ता आपने जवाज बतलाने के लिए पहना और दूसरा कुर्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेहबाब बतलाने के लिए पहना। तो हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद अल अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, वो फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज की आस्तीन जो है वो पहुंचे तक थी। और बाद हजरत ने यह कहा कि भाई इसमें यह भी हो सकता है कि अंदाजन कह दिया हो। तो एक सहाबी ने यह कह दिया कि पहुंचे तक थी, दूसरे ने यह कह दिया कि उंगलियों तक थी, तो अंदाजन है। मगर भाई ज्यादा राजे जो है सारी हदीसों को सामने रखकर और हजरत मुहद्दिसीन के अकवाल को रखकर जो बात सामने आती है वो ये कि कुर्ते की आस्तीन के लिए इस्तेहबाब और सुन्नियत यही है कि वो यहां ये पहुंचों तक हो और उसके अलावा बाकी दूसरी चीजें उसके ऊपर हो जावे, और उसके लिए सुन्नियत यह है और इस्तेहबाब यह है कि उंगलियों से आगे न जाए। अल्लाह ताला शानहु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा की जितनी भी चीजें हैं, बड़ी चीजें, छोटी चीजें, उनको सीखने की, समझने की तौफीक अता फरमावे और अल्लाह ताला शानहु उसके मुताबिक जिंदगी बनाने की तौफीक अता फरमावे। व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही।